ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பகவான் பாஷ்யகார சங்கராச்சாரியஜி கேட்டு, கேயம் கீதா நாம சஹஸ்ரம், ஜேயம் ஸ்ரீபதி ரூபமஜஸ்ரம், நேயம் சஜ்ஜன சங்கே சித்தம், தேயம் தீன ஜனாய சவித்தம். சபசே பேலே பதாயா கி யதி கேயம், யனி கானே கி இச்சா ஹோ யதி, तो कहते यदि गेय है, गेय कहते हैं गाने योग्य, उसको कहते हैं गेय, गेयम, ग्य नहीं ग, गकार, गेयम. तो कहते हैं गीता और नाम सहस्रम, गीता का पाठ, सहस्र नाम का पाठ, महिमन का पाठ, जो भी हम जिस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा है उस देवता का स्तोत्र का पाठ करना. भगवान भाष्यकार ने सभी देवताओं की स्तुति की है और उसका अभिप्राय यह था कि जो व्यक्ति जिस देवता में श्रद्धा रखता है वो उस देवता को प्रसन्न करे और उससे आगे बढ़े, इसलिए तद अनुकूल सभी देवताओं के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्तोत्र की रचना की है, इसलिए उसका पाठ करते रहना चाहिए. और पाठ का क्या फल है देखो, वो भी बताया. भगवद गीता किंचद धीता, गंगा जललव कणिका पीता, सकृदपि ये नमो रारे समर्चा, तस्य यम किम कुरुते चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. देखे भगवान भाष्यकार यहां प्रतिभू है, प्रतिभू समझ में है, प्रतिभू कहते जिम्मेदार. देखिए आपके पास जो 100-500 की जो नोट है कि नहीं, उसके अंदर वो एक प्रॉमिस किया जाता है गवर्नर की ओर से, और उसमें गवर्नर की साइन रहती है. अब वो 100-500 जो भी नोट है वो आप चाहे कहीं भी लेकर के चले जाए तो उसका जो मूल्य, उससे जो जितने मूल्य वो है उनकी जो वस्तु प्राप्त होती है वो कहीं से भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नर ने आपको प्रॉमिस किया. भगवान भाष्यकार का यह प्रॉमिस है कि भगवद गीता, यदि भगवद गीता का थोड़ा भी यदि अध्ययन करता है, गंगा जल का यदि वो पान करता है, भगवान का एक बार नाम लेता है, तो कहा कि यमराज उनकी चर्चा तक नहीं कर सकते. तस्य यम किम कुरुते चर्चा, अब यमराज यानी मृत्यु क्यों चर्चा करेंगे, उनको यमलोक में ले जाने के लिए ने, यमलोक का भागीदार कौन होगा, जो पापी व्यक्ति होगा तो यमराजा है उन्हीं का ही स्मरण करेंगे, जो पापी होगा उनका ही स्मरण करेंगे. अब जिन्होंने गीता का अध्ययन किया, ज्ञान रूपी गंगा जल का पान किया, भगवान का एक बार नाम लिया, तो उनके तो सारे पाप समाप्त हो गए. अब पाप समाप्त हो गए तो वो निष्पाप हो गया, और निष्पापी व्यक्ति का स्मरण कौन करेंगे, भगवान करेंगे. भगवान कहेंगे अपने देवदूतों को, कहेंगे कि जाओ उनको तुम मेरे पास ले आओ. अजामिल की कथा प्रसिद्ध है भागवत में, दुराचारी पापी व्यभिचारी होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र की व्याज से भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने कहा कि अपने देवदूतों को कहा कि जाओ तुमको, तुम उनको छुड़ाओ, देव यमदूतों से छुड़ाओ, यहीं ले आओ मेरे पास. और भगवान के दूत वहां गए और यम के दूत पहले से वहां आ रखे थे, यमदूतों ने देवदूतों को देखा, कह रहे तुम यहां कैसे आ गए? तो देवदूत कहने लगे, कह रहे तुम यहां कैसे आ गए? कह रहे वो तो हमारा अधिकार है इनको ले जाने का। यमदूत कहने लगे कि नहीं, ये अन्यायी, ये तो बड़ा दुराचारी है, पापी है, व्यभिचारी है, उनका तो यमलोक में स्थान होना चाहिए, ये तो बड़ा अन्यायी है, आप उनको वैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं। बड़ा दिव्य संवाद है, पढ़ना चाहिए। देवदूत कहने लगे कि तुम लोगों को पता नहीं है, जो भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम लेता है, उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, वो यमलोक यम सदन का अधिकारी वो नहीं रहता है, वो नरक का भागी नहीं होता। कहते बड़ा दिव्य और लंबा संवाद है। देवदूत ने यमदूतों को भगा दिया और यमदूत जो है गए अपने मुखिया के पास, राजा के पास, कहने लगे कि अरे ये तो बड़ा अन्याय हो गया, कहले हम गए उनको लेने के लिए, वहां देवदूत आ गए और हमको मार करके भगा दिया। अब आज तक तो हम यही सोचते थे कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तब वो लोग कौन थे जिन्होंने हमको भगा दिया, क्या वो आपसे भी बड़े हैं क्या? तो धर्मराज कहने लगे कि वो मेरे से भी बड़े हैं, तुम लोग गलत जगह पहुंच गए, तुमको वहीं जाना है। कहां? तो कहा जिह्वाम्न भक्ति भगवन गुण नाम धेयम, को वहीं जाना है जो अपनी वाणी के द्वारा भगवान का कभी नाम नहीं लेता है, कभी नाम नहीं लिया है, उनके वहां आपको जाना है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वाणी से उच्चारण करने मात्र से अर्थ न भी समझ में आए, किंतु नामोच्चारण मात्र करेंगे तो भगवान ये मान लेते कि ये मेरे को ही बुला रहे। अब अजामिल ने भगवान को थोड़ा ना पुकारा था, किसको पुकारा था बताइए? अपने पुत्र को, और पुत्र का नाम नारायण रखा था। अब नारायण शब्द का अर्थ किस में घटेगा बताइए? पुत्र में घटेगा कि परमात्मा में घटेगा? तो जो नाम के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अर्थ को उपस्थित कर देती है, वाणी के अंदर बड़ी बड़ी विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्ति रचिंत्यत्वाद शब्दादेव अपरोक्षति, भगवान भाष्यकार सदाचार स्तोत्र में कहते हैं शब्द के अंदर अचिंत्य शक्ति रहती है, शब्द का उच्चारण करते ही उनका अर्थ अवश्य उपस्थित हो ही जाता है। इसलिए नारायण शब्द का अर्थ है वो भगवान विष्णु। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सुनवह अयनम तस्य ताम पूर्व तीन नारायण स्मृत, ऐसा नारायण शब्द का अर्थ किया गया। वो तो भगवान में ही घटेगा, पुत्र में तो घटेगा ही नहीं। इसलिए हम वाणी से उच्चारण, यदि गीता वाक्य का उच्चारण करेंगे तो गीता किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है कि नहीं बताइए? भगवान ने जो वाणी बोली है वो वाणी यदि हम बोलेंगे तो उनका लाभ जो है अवश्य, चाहे समझे या न समझे, मिलेगा ही। जैसे समझ लो लोकों में अनुकरण नहीं होता। अब ठीक है किसका अनुकरण करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस बात को नहीं जानते, लेकिन लोक का एक स्वभाव होता है कि किसी का अनुकरण करे। इसलिए जो नाचने गाने वाले लोग हैं वो जैसे कपड़े पहनते हैं, वो जैसे खाते हैं, वो जैसे पीते हैं, जैसे वो चलते हैं, वो जहां जाते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि उनका अनुकरण करते हैं, वो जैसे खाते पीते जो जो एक्शन करते हैं तो लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। लोग का स्वभाव है अनुकरण करे, तो फिर हम ये अनुकरण क्यों न करें? भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो गाया है, उनको हम प्रतिबद्ध गाए तो वो भी अनुकरण है, उतने मात्रा से हमको लाभ मिलेगा। गीता पाठ उपनिषद पाठ करना ही वाणी का तप है। यदि वो वाणी से इस प्रकार का तप होगा तो वो हमारी जो वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाती है। यही प्रार्थना का अभिप्राय है कि हमारी वाग इंद्रिया ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। हम यहां वाणी प्रधान है, वाणी को उपलक्षण मान करके हाथ पैर वगैरह से भी यही मानना है। जैसे आपको कल बताया था, हाथ से हम सेवा करें, यदि हाथ से हम सेवा करेंगे निष्काम भाव से तो फिर वो जो है हाथ ब्रह्म ध्यान के अनुकूल बन जाएगा। पैर से हम चले साध्य करने के लिए, सत्संग करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो वो जो पैर का गमन है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है। इस तरह से जैसे कल अन्य कर्मेंद्रियों का भी बताया था ना कि पुत्रोत्पत्ति वगैरह जो भी कर्म इंद्रियों के द्वारा करते वो भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल करना। अब वाणी से तो विवाद हो गई, वाक प्राण चक्षु, प्राण भी हमारे ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो तो प्राण ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कैसे हो सकता है? देखिए, देखो हमारा शरीर किससे धारण किया हुआ? प्राण ने धारण किया है। तो हमारा प्राण ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कैसे होगा? तो जैसे गीता में भगवान ने कहा, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, नासिका के अंदर जो चरण करने वाला प्राण है वो प्राण यदि सम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल। प्राण और अपान को क्या कर देना? सम कर देना है, यानी कुंभक कर देना है। यदि वो साम्यावस्था को प्राप्त हो जाए तो वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है वो। और प्राण है वो हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। देखिए, प्राण यदि नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। प्राण के अंदर क्रिया शक्ति है, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो भी क्रिया करते हैं उस कर्मेंद्रियों में शक्ति किसकी है? प्राण की है। समझ लो कि हम लोग बोलते हैं, जो सिंगर है उनको इस बात का निश्चित पता रहता है। वो सिंगर जो गाते हैं तो वो एक साथ में इतना ही गा सकते हैं जितना श्वास है। श्वास खत्म हो गया तो वो पंक्ति वहीं के वहीं अधूरी रह जाती है। जो गाते हैं उसको इस बात का पता, गाने के लिए क्या चाहिए? प्राण चाहिए। इसलिए पहले प्राण को पूरक करना पड़ता है। आप पूरक किए हुए प्राण, पूरक करने के बाद आप गाना शुरू करेंगे, जैसे आप गाते चले जाएंगे वो पूरक प्राण है वो रेचक होता चला जाता है। और एक समय आ जाता है कि जो है प्राण है वो बिल्कुल रेचक हो जाता है, फिर तुरंत उसको खींचना पड़ता है। प्राण बिल्कुल रेचक करके बोलिए, कौन बोल सकेगा? बिल्कुल प्राण को रेचक कर दीजिए फिर बोलिए, नहीं हो सकेगा। तब पता चलेगा कि हमारे शरीर की स्थिति में प्राण की कितनी आवश्यकता है। यदि ये प्राण अपने स्वरूप में नहीं है तो वो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाएगा, और तो फिर ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो नहीं होगा। इसलिए बोलने के लिए, अच्छा कोई चीज उठानी है, आपको कहे कि चलो इस ये चीज को उठा करके यहां से वहां रख लो, तो देखिए वो जो कार्य है वो भी प्राण के द्वारा ही होगा। उस समय भी प्राण को रोक लेना पड़ता है। यदि उस समय भी आप प्राण को बिल्कुल रेचक कर दीजिए उसके बाद काम नहीं होगा। इसलिए सामान्य भाषा में नहीं कहते इसके अंदर कोई दम नहीं है। दम नहीं है यानी प्राण शक्ति नहीं है। इसलिए प्राण की बड़ी आवश्यकता है। ये शरीर की स्थिति में प्राण ही कारण है। देखो बोलने के लिए भी प्राण कारण है, ये हाथ से कोई चीज उठाने के लिए, सेवा करने के लिए भी, चलने के लिए भी, और जो गुप्त इंद्रियों के जो दो कार्य है उसमें भी प्राण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, शौच क्रिया तभी होगी जब प्राण सानुकूल हो, अपान वायु सानुकूल नहीं है तो पेट साफ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रहा है। तो गैस क्या, वो अपान वायु है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, उसका जैसा जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जगह करता है, कहीं ना कहीं जगह करता है, तो वो जो है शरीर के लिए वो अस्वस्थता का कारण बन जाता है, और अस्वस्थ शरीर के द्वारा जो है कुछ काम नहीं हो सकता। इसलिए उसमें भी और पुत्रोत्पत्ति के लिए भी वो प्राण ही कारण है। पुत्रोत्पत्ति के लिए जो गर्भाधान किया जाता है और उसके बाद जो मैथुन क्रिया, उसमें भी प्राण की आवश्यकता है, नहीं तो वीर्य सिंचन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें भी क्या चाहिए बताइए, प्राण चाहिए, और वो अनुकूल चाहिए। इसलिए पांचों प्राण है जो हमारी प्राण वृत्ति है शरीर में, वो पांचों प्राण वृत्ति है वो शरीर की स्थिति में कारण है। यदि वो सुचारू रूप से नहीं होंगे तो हमारा ये जो शरीर ब्रह्म ध्यान के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा प्राण आप्यायन्तु, फिर कहा चक्षुः, चक्षु से अभिप्राय है ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया भी वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जैसे जो दर्शन स्पर्शन है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। तो ये पहला वाक्य हो गया ममांगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम सर्वाणी इंद्रियाणी आप्यायन्तु, मेरे जो भी अंग है, एक वाक्य बन गया। अंग फिर गिना भी दिए गए, वाक प्राण चक्षु श्रोत्र और सर्वाणी इंद्रियाणी, जो जिसका नाम नहीं लिया गया वो सब ले लीजिए। सर्वाणी इंद्रियाणी आप्यायन्तु, मेरी सभी इंद्रियों के द्वारा मैं ब्रह्म का ध्यान करूं, ब्रह्म चिंतन करूं, ब्रह्म के लिए गमन करूं, ब्रह्म के लिए ग्रहण करूं, ब्रह्म के लिए ही बोलूं, ये अभिप्राय है। फिर दूसरा वाक्य हो गया अथ बलम, देखिए उसमें है अथ बलम, मैं अथो है ना, अथो अथो बलम, वो ओकार का जो है जब संधि विग्रह होगा तो विसर्ग हो जाएगा, अथ बलम अथो बलम, यानी अथ का अर्थ है और। केवल ये जो हमारी इंद्रिया है वो बलम, इंद्रियों का जो बल है वो भी आप्यायन्तु, तो बल शक्ति का आधान हो, और वो बल है, वो बल से हम ब्रह्म का ध्यान करें, वो ब्रह्म है बल, वो भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। हम ये नहीं कि हमारे पास जो इंद्रियों का बल है वो कहीं किसी को सताने के लिए यूज न करें, तो बल भी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो। देखिए होता ऐसा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशाम परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का बल हुआ करता है, एक धन का बल होता है, और एक शक्ति खुद, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीड़नाय, तो तीन हुए कि नहीं, एक धन, विद्या, धन और शक्ति, विद्या बुद्धि शक्ति और धन है वो धन, धन से जो शक्ति धन बल, और शक्ति यानी कि बाहुबल, ये कहते हैं ना ये बड़ा बाहुबली है या धन बली है, लोक में जनबल, धनबल, बाहुबल, सत्ता बल, ये सब बल नहीं कहते। और जब ये बल व्यक्ति के अंदर आ जाए तो बड़ा वो प्राउड हो जाता है, वो अपने को ये सोचने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। अब विवेक के अभाव में वो बल का जो है वो दुरुपयोग करता है। खल और साधु में ये भेद है, यदि साधु के पास विद्या है तो वो दूसरे को वो बांटेगा, वो ज्ञानाय दूसरे को ज्ञान देगा, वो हर हमेशा यही सोचता रहेगा कि ये इनका लाभ दूसरे को भी मिले। यदि खल के पास यदि विद्या आ जाती है तो वो विवाद करेगा, विवाद आय उसका उपयोग, विवाद करेगा और सोचेगा कि ये तो है मेरे से नीचा है, मैं उसको हरा सकता हूं, विवाद में उसको परास्त कर सकता हूं, वो विवाद करेगा उससे। साधु के पास यदि धन आता है तो वो दानाय वो परोपकार करेगा, वो उनके लिए, वो दूसरे के लिए उनका उपयोग करेगा, परोपकार करेगा। साधु को हम लोग धन इसलिए ही तो देते कि ठीक है हम लोग अभी कमाने में व्यस्त है, हम कमा रहे हैं, दान करने का या सदुपयोग करने का, खुद यदि उनका उपयोग करने का यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम साधु लोगों को दे देते हैं कि साधु लोग जो है बड़े परोपकार के काम करते तो उसको दो तो हमारे धन का सदुपयोग हो जाए। तो धन साधु के पास यदि धन आता है तो वो दाना या वो दूसरे के लिए उसका उपयोग करते हैं, यदि खल के पास आता है तो वो मदाय उनके लिए वो मद का कारण बन जाता है और मद के अहंकार के अंदर वो दूसरे को वो दुख देता है। और साधु के पास यदि शक्ति है तो वो उससे दूसरे का रक्षण करेगा, और खल के पास यदि शक्ति है तो वो पर पीड़नाय वो दूसरे को क्या करेगा, पीड़ित करेगा। इसलिए ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना उससे लोग दूर रहते हैं, कहते हैं उससे दूर रहना ठीक है, क्यों, तो कि उसके हाथ बड़े लंबे हैं, कहते हैं बोलते हैं ना हाथ लंबे का अर्थ है वो उससे जो है पंगा नहीं लेना चाहिए, वो किसी का भला नहीं करेगा, वो नुकसान ही करेगा। यदि ज्यादा वो दुष्ट होगा तो डायरेक्ट करेगा और नहीं तो इनडायरेक्ट करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो पीछे पीछे क्या कर रहा है। इसलिए जो है शक्ति बल, बल जो है ब्रह्म ध्यान के अनुकूल होना चाहिए, अथ बलम, ये हो गया। अब देखिए जब हमारी ये सारी इंद्रियां जब ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए और अनुकूल होने का लाभ क्या होगा, देखो तो कहा सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, ये अनुभव होगा, ये निश्चय हो जाएगा कि सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, सर्वम से अभिप्राय है जो इदं कारास्वद, संपूर्ण जो संसार है वो क्या है, वो संसार नाम रूपात्मक संसार संसार है या क्या है, तो कहते हैं वो ब्रह्म एव। और कैसा ब्रह्म है तो कहा उपनिषदम ब्रह्म, मनुष्य बुद्धि परिकल्पित नहीं किंतु उपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद माने औपनिषदम, उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है। तो ये इदम खलु जो ब्रह्म, ये जो कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो श्रुति में कहा कि सारा संसार वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, वो ज्ञान उपनिषद से होगा मनुष्य बुद्धि से नहीं होगा। इसलिए जो ब्रह्म है वो उपनिषद प्रतिपाद्य है, ब्रह्म संसार के अंदर सर्वत्र ब्रह्म है, उसको जानने के लिए केवल उपनिषद ही एकमात्र माध्यम है, उपनिषद के ज्ञान से ही होगा। इसलिए उपनिषद का ज्ञान लेने के लिए हमारी सारी इंद्रिय अनुकूल नहीं होगी तो उपनिषद का ज्ञान ही नहीं होगा, उपनिषद प्रतिपाद्य ज्ञान नहीं होगा, अर्थ नहीं समझ में आएगा, तो वो उपनिषद का अर्थ ब्रह्म है वो ब्रह्म भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा सर्वम उपनिषदम ब्रह्म। सर्वम का अर्थ है निखिलम, जो पंचभूतात्मक जो वो संसार है, स्थावर और जंगम, व्याकृत और अव्याकृत, ये संपूर्ण संसार कैसा है, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य है, उनकी जो सत्ता है वो ब्रह्म की सत्ता से भिन्न सत्ता नहीं है, यही ब्रह्म दर्शन है। कि जो संसार के पदार्थों की जो सत्ता है वो जिस सत्ता वाले है वो उनकी सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता से वो सब सत्तान्वित है। यदि ब्रह्म अंदर से निकल जाए, यदि हार वेट मिट्टी में से सोना निकाल लिया जाए तो हार वेट मिट्टी की कोई सत्ता नहीं रहेगी, घट वगैरह में से मिट्टी को निकाल लिया जाए तो उसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी। घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से है, मिट्टी की सत्ता नहीं होगी तो घट की सत्ता नहीं रहेगी। घट के अंदर जो आप पानी वगैरह भर सकते हैं वो मिट्टी के कारण, अंदर से मिट्टी निकाल लो नहीं रहेगा, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए घट की सत्ता मिट्टी की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। इस तरह ये सारे संसार के पदार्थ है, उस पदार्थ की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, यही समझना, यही ब्रह्म ज्ञान है। उसके लिए हमारी इंद्रिया पूरा कार्यकरण संगात तैयार हो, इसलिए यहां प्रार्थना की जा रही है और प्रार्थना के फलस्वरूप इस प्रकार का जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ओम।